नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। कोयला उद्योग में 2035 तक 4 लाख से अधिक खनन संबंधी नौकरियां खत्म होने की आशंका है, यानी हर दिन करीब 100 श्रमिकों की नौकरी जा सकती है। एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई। जलवायु प्रतिबद्धताओं या कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की नीतियों के बिना भी चीन और भारत में ऐसा होने की आशंका है। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर द्वारा संकलित रिपोर्ट के अनुसार इसकी प्रमुख वजह सस्ती पवन व ऊर्जा उत्पादन की ओर बाजार का बदलाव और कोयले के बाद अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के प्रबंधन के लिए योजना की कमी होगी। अमेरिका स्थित एक गैर सरकारी संगठन ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर उभरते अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परिदृश्य का विश्लेषण करता है। रिपोर्ट के अनुसार कोयला सुविधाओं के बंद होने की आशंका के कारण परिचालन खदानों में 9,90,200 कोयला खनन नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। संभावित रूप से मौजूदा कार्यबल के एक तिहाई से अधिक की छटनी होगी। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में दिल्ली पवेलियन इस वर्ष बड़ा और अधिक आकर्षक होगा। इसका मुख्य ध्यान राष्ट्रीय राजधानी को चिकित्सा पर्यटन के केंद्र के रूप में बढ़ावा देने पर होगा। दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम ने दिल्ली पवेलियन के बाहरी हिस्से, बाहरी और आंतरिक हिस्से को डिजाइन करने और सजावट के लिए एक डिजाइनर सह ठेकेदार की नियुक्ति के लिए निविदा जारी की है। कार्य की अनुमानित लागत 75 लाख रुपए है। DSIIDC के एक अधिकारी ने कहा कि हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी द्वारा आयोजित सफल G20 शिखर सम्मेलन को प्रमुखता से दर्शाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने एक डिजाइनर की नियुक्ति के लिए निविदा जारी की है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है, जिसके बाद बोलियां खोली जाएंगी। प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देशों ने इस क्षेत्र के मशीनीकरण, बढ़ी हुई श्रम लागत और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान जैसे मुद्दों से निपटने के लिए सोमवार को यहां एक बैठक में चर्चा की। एक बयान में कहा गया कि प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देश के संघ की वार्षिक बैठक में कोविड महामारी के बाद वर्तमान वैश्विक परिदृश्य और रूस यूक्रेन युद्ध सहित इस क्षेत्र से संबंधित विषयों पर चर्चा भी की गई। भारत के रबड़ बोर्ड के चेयरमैन सावर धनानिया ने बैठक का उद्घाटन किया, जिसका विषय प्राकृतिक रबड़ उद्योग 21वीं सदी में चुनौतियां और नीति विकल्प था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धनानिया ने कहा कि संघ को साझा मुद्दों की प्राथमिकता तय करनी चाहिए और उचित नीतियां बनानी चाहिए। घरेलू शेयर बाजारों में शुरुआती कारोबार में मंगलवार को उछाल आया और सेंसेक्स 300 अंक से अधिक चढ़ गया। एशियाई बाजार में सकारात्मक रुख इसकी मुख्य वजह रही। इसराइल हमास संघर्ष पर चिंताओं के बीच कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने और भारी गिरावट देखने के एक दिन बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में काफ़ी तेजी आई। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 303.92 अंक या 0.46% चढ़कर 65,816.31 अंक पर पहुंच गया, जबकि NSE निफ्टी 87.15 अंक या 0.45% बढ़कर 19,599.50 अंक पर रहा। अन्य एशियाई बाजारों में जापान का निक्की और हांगकांग का हैंग सेंग फायदे में रहे। अमेरिकी बाजार सोमवार को सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे। सेंसेक्स 483.24 अंक यानी 0.73% गिरकर 65,512.39 अंक पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी 141.15 अंक यानी 0.72% की गिरावट के साथ 19,512.35 अंक पर सोमवार को बंद हुआ था। देश में जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की बेरोजगारी दर 6 साल के निचले स्तर 3.2% पर रही। सरकारी सर्वेक्षण में ये बात सामने आई। बेरोजगारी या बेरोजगारी दर को श्रम बल में बेरोजगार लोगों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की ओर से जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 के अनुसार जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर 2021-22 में 4.1% से घटकर 2022-23 में 3.2% हो गई। सामान्य स्थिति का मतलब है कि रोजगार सर्वेक्षण की तारीख से पहले के 365 दिन के आधार पर निर्धारित किया गया है। वेदांता लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि कर अधिकारियों ने उसकी अनुषंगी इकाई हिंदुस्तान जिंक पर 1.81 करोड़ का जुर्माना लगाया है। वेदांता लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि उसे जुर्माने का आदेश 8 अक्टूबर को मिला। वेदांता लिमिटेड ने कहा कंपनी को उदयपुर सीजीएसटी ऑडिट सर्कल के खंड ए के सहायक आयुक्त ने जुलाई 2017 से मार्च 2018 के लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 74(9) के साथ साथ एसजीएसटी अधिनियम 2017 के संबंधित प्रावधानों और आईजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 20 के अंतर्गत 1,81,06,073 रुपये के जुर्माने का आदेश भेजा है। भारत के रत्न और आभूषण निर्यातकों ने सोमवार को आशंका जताई कि इसराइल हमास संघर्ष के कारण इसराइल के साथ कारोबार प्रभावित हो सकता है। कामा ज्वेलरी के प्रबंध निदेशक कोलिन शाह ने कहा कि युद्ध से इसराइल को भारत निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भारत और इसराइल के बीच रत्न और आभूषण का कुल कारोबार 2022-23 में 2.04 अरब डॉलर रहा था, जबकि 2021-22 में ये 2.8 अरब डॉलर रहा था। शाह ने कहा कि युद्ध इसराइल और एशिया में उसके दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार भारत के बीच व्यापार को और अधिक प्रभावित करेगा। मुंबई के निर्यातक और टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इंडिया के संस्थापक चेयरमैन शरद कुमार सर्राफ ने कहा कि इसराइल हमास युद्ध का भारतीय निर्यातकों पर कुछ समय के लिए प्रभाव पड़ सकता है। सर्राफ ने कहा कि लेकिन अगर युद्ध बढ़ता है तो उस क्षेत्र के हमारे निर्यातकों के लिए हालात और बिगड़ सकते हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए iJanSatta.com पर नमस्कार।